शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरम् जाग्रं जागुदरोति संविदधतं पट्टं वृन्दारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम् दामोदरम् आज नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शिष्यमत भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि के नाते उनका गुणगान किया गया। विभिन्न वक्ताओं ने उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। बहुत से वक्ताओं ने विभिन्न विषयों में उनके जीवन चरित्र के बहुत से पहलुओं पर विचार किया। बहुत सुंदर विचार रहा, अधिक कहने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर भी दो चार शब्द मैं अपने को पवित्र होने के लिए कह रहा हूं। परम पूज्यपाद भक्ति रक्षक महाराज सिद्धर महाराज जी प्रभुपाद जी के अंतरंग भक्तों में से एक थे। वैसे तो इन लोगों ने सभी कुछ कहा है, किंतु वे उच्च कुल में ब्राह्मण धनी कुल में पैदा हुए और बचपन से ही कुछ भक्ति की तरफ में उनका झुकाव था। रामचंद्र की उपासना करते थे जैसा मैं पहले करता था। फिर से इधर में आया, ऐसे ही वे राम की उपासना करते थे। फिर प्रभुपाद और उनके गणों के संपर्क में आकर के कृष्ण की भक्ति की तरफ में आए। जैसा कि बतलाया गया, वो कलकत्ते में लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे और किसी प्रकार से प्रभुपाद का संपर्क हुआ और प्रभुपाद के निकट में आए। और उसी समय जबकि वो पढ़ रहे थे तो ही प्रभुपाद के दर्शनों के लिए मायापुर में आए, योगपीठ आकर मठ राज चैतन्य मठ में प्रभुपाद जी वहां थे। उस समय गुरुजी को, हमारे गुरुजी को देखा, बहुत सुंदर वेश में, सफेद वस्त्र में, और टेबल के ऊपर में पैर रख करके हिला रहे थे, आंख बंद करके और बेंत की छड़ी अपने हाथ में लिए हुए थे, आंख बंद करके कुछ चिंतन कर रहे थे। बड़े बड़े सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग आकर के प्रणाम करके कुछ पूछते और पैर रख करके उसी पर से वो उनका उत्तर दे दिया करते, फिर प्रणाम करके वो लोग चले जाते। तो परम पूज्य पाशीधर महाराज जी, उनको देखा जी छोटी उम्र का ब्रह्मचारी सफेद कपड़े में, और बड़े बड़े सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग, और इसको प्रणाम करके जा रहे हैं, बात क्या है, कौन है? तो किसी से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि नहीं जानते, ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, इन्होंने ही मियापुर को मायापुर बदल दिया, एक दिन में कब्बर खाना सब हटाकर और पेड़ पौधे लगा करके चैतन्य महाप्रभु की भूमि उन्होंने बना दी, और भी प्रजाओं का शासन इत्यादि किया। तो इनसे बड़े प्रभावित हुए और उसी समय में इनके प्रति इनकी श्रद्धा हुई। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने लॉ पढ़ना बंद कर दिया और प्रभु बात के निकट आए। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, विवाहित जीवन था, किंतु कुछ दिनों के बाद ही उनकी स्त्री का परलोक गमन हो गया। बस इनके लिए तो वरदान हो गया, घर छोड़ करके मठ में आ गए। ब्रह्मचारी का नाम इनका
रामानंद
ब्रह्मचारी था। बहुत दिल डॉल के लंबे चौड़े व्यक्ति थे। पीछे से प्रभुपाद जी ने इनको संन्यास दिया, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। प्रभुपाद के प्रचार में मद्रास गौड़िया मठ जब हुआ तब ये गए, वहां पर उन्होंने भाषण दिए। हरिद्वार में और नैमिषारण्य में, उत्तर भारत में जहां जहां जरूरत थी प्रभुपाद ने इनको भेजा, और उन्होंने सफल प्रचार किए। प्रचार के साथ ही साथ में ये कवि भी थे, लेखक भी थे, संस्कृत के विद्वान थे। वो प्रभुपाद जी का अष्टक है कि दशाक्ष, ये और गौरांग मंगल स्तोत्र स्तोत्र और बहुत से संस्कृत के उन्होंने सब लिखे हैं। तो इस तरह से हमारे गुरुजी ने प्रभुपाद के कहने से तीन तीन बार संन्यास नहीं लिया, किंतु एक बार परिक्रमा के समय में उन्होंने खुद गुरुजी को संन्यास अपने हाथ से देकर के उनका वस्त्र लिया, और पीछे से फिर प्रभुपाद ने जब स्वप्न दिया तो कुछ बार श्रीधर महाराज के यहाँ जाकर के, और कटवा में विश्वरूप खौर के दिन में उन्होंने संन्यास लिया। यद्यपि हमारे गुरुजी उनसे सीनियर थे, 1916 में आए और ये 1926 में आए थे, तब संन्यास इन्होंने पहले लिया। गुरुजी को प्रभुपाद संन्यास देना चाहते थे, किंतु वैष्णव के अनुरोध से उन्होंने नहीं दिया, सफेद कपड़े में रखा, क्योंकि व्यवस्था नहीं होगी मठ मंदिरों की। ये मैनेजर थे, इसलिए जानबूझ करके प्रभुपाद ने इनको इसी बेश में रखा था, इसलिए सभी लोग इनको सम्मान करते थे। यद्यपि गुरु महाराज जी को इन्होंने संन्यास दिया, किंतु सब समय हमारे गुरु जी को ये सम्मान देते थे, क्योंकि गुरु जी प्रभुपाद की ऐसी सेवा की थी जो किसी ने नहीं किया। प्राणों को हाथ में लेकर वहां प्रौढ़ा योग माया में नवद्वीप में परिक्रमा के समय प्राणों की रक्षा की थी। उस समय तो सभी लोग थे, किंतु कोई भी नहीं सामने आया, सब लोग भाग गए, किंतु गुरु महाराज जी उनको अपना वस्त्र दे करके, उनका वस्त्र ले करके उनको मायापुर भेजा। ये सब लोग जानते थे, इसलिए गुरु जी का सभी लोग सम्मान करते थे, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी भी सम्मान करते थे। मैं गुरु जी के साथ में प्रति वर्ष सारस्वत गौड़ीय मठ में जाता था। परिक्रमा के बाद में गुरु जी प्रति वर्ष बिना नागा हम लोगों को साथ लेकर के वहां जाते, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी को से भेंट करने के लिए, और वहां पर तरह तरह की भक्ति की चर्चाएं होती थी और उन चर्चाओं को हम लोग सुनते थे। कभी कभी दोनों में तर्क वितर्क होता, श्रीधर महाराज एक बात को कहते स्थापन करते, गुरुजी उसका खंडन करके नया स्थापन करते, फिर उसका वो खंडन करते, वो उसका खंडन करते, और सब मठ के लोग ब्रह्मचारी सन्यासी वो सुनने के लिए आते। कभी हमने देखा ब्रजमंडल परिक्रमा के समय में केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा में पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद जजावर महाराज जी, पूज्यपाद माधव महाराज जी, पूज्यपाद ऋषिकेश महाराज जी और न जाने कितने साधु सन्यासी लोग गुरु जी से मिलने के लिए हमारे केशव जी गौड़ीय मठ में इसी कार्तिक के महीने में आए, और वहीं पर दोनों में बातचीत होने लगी। ऋषिकेश महाराज जी थे, उन्होंने प्रश्न किया और श्रीधर महाराज ने उसका उत्तर दिया, फिर गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया। उनका प्रश्न था जीव के अंदर में जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यदि दासत्व है तो किस प्रकार का दास्य है या नहीं है, कोई पोटेंसी उसकी नहीं है, साधुओं के संग से गुरु की कृपा से वो होता है, अथवा जीव का अपना कोई स्वरूप है। तब श्री महाराज जी कुछ बोले और बोले जे केशव महाराज जी से पूछा जाए, ये उत्तर देंगे। तब गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया था, जिस प्रकार से एक ही गंगा के तट पर एक ही जलवायु में एक ही पानी से सिंचन करने वाला होने पर एक ही सूर्य का ताप, हवा सब कुछ एक ही हो, और इमली के पेड़, इमली का बीज, नीम का बीज, आम का बीज, कटहल का बीज इत्यादि यदि बो दिए जाएं तो एक ही प्रकार का होना चाहिए, एक प्रकार का होता है नहीं। इमली शिमली का पेड़, वही पानी, वही सूरज, वही रोशनी, वही हवा, एक ही माली, किंतु होता है पृथक पृथक। उसी प्रकार से जीव स्वरूप में कोई जीव की अपनी पोटेंसी है ना? वो साधु संग से विकसित होती है, अनर्थ दूर होता जाएगा और उसका स्वरूप विकसित होगा। इसलिए जीव का स्वरूप एक निश्चित है, किंतु ये बात याद रखिए जो लोग महाप्रभु के धारा में आते हैं, महाप्रभु की धारा में आते हैं, उनका जरूर किसी न किसी रूप में गोपियों जैसे भाव का है सबका स्वरूप, क्योंकि इधर में आएंगे कैसे, ओ जी इतने आदमी कहां है, इतने आदमी कितनी करोड़ों अरबों की आबादी में से महाप्रभु के भजन करने वाले कितने हैं, इन्हें गिने। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि महाप्रभु के अनुगत रहने वाले, इस धारा में आने वाले लोगों का गोपियों जैसा ही औपपत्य भाव कृष्ण के प्रति होगा, गोपी भाव ही होगा। किसी का पहले दास्य भाव उदित होता है, इसके बाद में किसी का सख्य हो सकता है, इसके बाद में किसी का वात्सल्य हो सकता है, किसी का साधु संग मिलने से और भी ऊपर जा सकता है। इसलिए सब लोग सुन करके बड़े प्रसन्न हुए गुरु जी का विचार। हमने गुरु जी के जीवन चरित्र में ये सब विषयों का वर्णन किया है। इस तरह से पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के यहाँ गुरु जी के बाद भी जब तक वो थे हम लोग प्रति वर्ष वहां जाते थे अपने बच्चों के साथ। मैं इनके यहाँ जाता, प्रश्न भी करता, उसका उत्तर भी देता। उन्होंने ही ये सब कहानियां हमको बतलाई जी मायापुर में कैसे मैं गया था, ये सब उन्होंने कहा था, उनके मुख से सुना। जब भी जाते थे कुछ न कुछ प्रश्न करते और वो उत्तर दिया करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन चरित्र बहुत ही आश्चर्यजनक है। आज के दिन उनके चरणों में हम पुष्पांजलि प्रदान करते हैं, हम सब लोगों के ऊपर में वो कृपा करें।
अभिज्ञान निवरणस्य अग्रंजन सलाकय चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। We heard how he came from such a high class, wealthy Brahmin family in Bengal. So he had from the beginning always some touch, some connection with bhakti. He used to worship Lord Ramachandra. Guruji said just like himself, he used to also worship Lord Ram. But by Sangha of Prabhupada and his associates, then he came towards the direction of Krishna. In Calcutta, for some time, he studied law. During that time, he first came to Srila Prabhupada. And he used to describe how, when he first came to Yogapit in Mayapur, that time when he came there, he saw our Param Gurudev and Guru Maharaj's Guru. He saw one brahmachari there, in white cloth, when he's sitting in one chair, with his feet resting upon a table.
This is story told Pujyapad Siddhar Maharaj to me and others.
His feet were walking here and there. He had his eyes closed and he was thinking something. That time, Srila Siddhar Maharaj said he saw many sannyasis and brahmacharis come and were giving him pranam, asking him some question, receiving an instruction, and they would go away. Srila Siddhar Maharaj was astonished. Who is this young age brahmachari? Even though he's in white cloth, all are giving him so much respect. Therefore, he asked someone, and someone said, oh, you don't know? That is Vinod Ramachari. He personally changed this Mayapur to Mayapur. He threw all the Muslim tombstones and planted many trees and gardens in this area and captured the whole area for Prabhupada Chaitanya Mahaprabhu. He himself controlled all these lands of the Chaitanya Mahaprabhu. So when Srila Siddhar Maharaj heard that, so much he developed Shraddha towards the feet of our Param Gurudev. After some time, he stopped his study of law and completely surrendered to Prabhupada and came to the mat. And after some days, he used to come more and more to Prabhupada, and after some days his wife went back to heaven, Paraloka, left her body, and then he fully came to Prabhupada in the mat. At that time, he was given by Srila Prabhupada the name Ramachandra. Ramananda Brahmachari. He was very tall and handsome, and after sannyas he was given the name Srila Bhakti Rakshat Sridhar Maharaj. He went everywhere preaching the mission of Prabhupada. Wherever was necessary, he used to go. He went to Madras, to Haridwar, to Namisaranya, to Delhi, to Bombay also, and that's Saroma. Many places he went. Wherever there was a necessity, he would fulfill that desire. He was very learned. He was a great poetic personality also. He was a high class of Rasik Vaishnava. He was also a Sanskrit scholar. He composed many, many compositions in Sanskrit and Bengali. He composed every morning we sing the Prabhupada Astikam. He composed the one stotra to Gauranga Mahaprabhu. So we know the history that our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan, Nityananda Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj, three times he was ready to take sannyas. But that time his sannyas was stopped because Prabhupada thought, oh, if he is managing everything, therefore it's better that he stays in white cloth. Therefore, three times the sannyas was ready, but everybody stopped. Oh, if he takes sannyas, who will manage everything? Therefore, sometimes he also, Param Gurudev also had dreams of Prabhupada. Prabhupada gave his name and mantra, everything in the dreams. But still, on the day of Vishwarup Kol, the middle of Chaturmasya, Vishwarup Mahatsav, on that day he took sannyas from Srila Bhakti Rachak Srila Maharaj in Katwa. Even though our Param Gurudev was so much senior, because he came to the Mat first in 1916, and Srila Bhakti Rachak Srila Maharaj came in 1926. Still, Srila Srila Maharaj always used to give so much respect and had so much faith in the feet of our Srila Param Gurudev. Because Srila Srila Maharaj used to tell us, because no one did service like your Gurudev, our Param Gurudev. How, when the Gurudev attacked Srila Saraswati Thakur at Paramatala, that time he gave his own life and forcibly changed the verse, the dress, and took the vesh of Srila Saraswati Thakur. Because of his Guru Nishtha and Seva, everyone, especially Srila Srila Maharaj, used to give so much respect to our Param Gurudev. And Guru Maharaj is saying, every year we used to go there, after Parikram, every year without fail, to the Sri Chaitanya Saraswati Gaudiya Math. And there we used to meet him. And so many discussions of bhakti used to take place between Srila Srila Maharaj and our Param Gurudev. There was so much Tarka Pitarka.
Not there, in Gaudiya Math, Navadvip, Mayap.
There were so much arguments there, friendly arguments. Param Gurudev would introduce a topic, Srila Srila Maharaj would destroy those arguments, Param Gurudev would destroy his arguments and establish a new one, and all the residents of the Math should come and hear the astonishing Harikatha. Guru Maharaj says, in his own life, he saw how all the senior disciples of Sri Saraswati Thakur, including Sri Bhakti Rachak Srila Maharaj, Sri Bhakti Daiti Madhav Maharaj, Sri Rishikesh Guru, Sri Yadava Maharaj, all would come to Sri Kesati Gaudiya Math in the month of Kartik for the Asanga and Association of our Param Gurudev. One time, Sri Rishikesh Maharaj asked a question to Sri Srila Maharaj. Jiveya Srupa Hoi Krishna Nitya Das. In the Sri Chaitanya Charitamrita, it describes that every jiva has a sarupa as a servant of Krishna. But is that sarupa attained by the medium of Sadhu Sangha and the mercy of Guru, or is that sarupa inherent already in the jiva and it simply manifests? Srila Srila Maharaj answered something, then he referred the answer to our Param Srila Param Gurudev. He said, oh, Srila Kesava Maharaj will answer. So our Param Guruji said, there is one bank on the river. There is the same sunlight, the same water, the same soil, the same fertilizer, the same garden, but different seeds are given in the soil. One Imli tamarind tree, one mango tree, one lemon tree, one bakul tree. Different seeds are given in the same soil. Does the same tree manifest? No. Different trees manifest. Despite that everything is the same, different results are achieved. In the same way, all of us have one unique, special sarup, eternally inherent within the soul. And by the mercy of Sadhu Sangha, when all anattas are dispelled, then automatically the real sarup of the jiva will manifest at that time. Therefore, Guru Maharaj says, understand this very nicely, that we can think all those who have come to Sri Chaitanya Mahaprabhu must have the mood of Krishna like the gopis. All must have some touch of gopi bhav. Why? This is not a very hard thing to believe. Because you think in this universe, how many billions and billions of jivas? How many have a human form of life? Very few. And how many have come to the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu? only a handful. They're able to think that all who come to Mahaprabhu worship Krishna in the mood of Upapati Bhav, Parikir Ras. This is not an astonishing thing. This is complete fact. But still, some may have Dasya, Sankhya, Vatsalya, but you can think most will definitely have the mood towards Krishna in the mood of the gopis. Hearing this, everyone became ecstatic. Hearing this conclusion about Param Gurudev, all became very happy. Yama Guru Maharaj says, every year, our Param Gurudev used to go with his children, his disciples like Guru Maharaj.
Nana, myself, after my Gurudev left this world, I used to go with my brahmacharis.
Gurudev used to go there with his children, his brahmacharis. And we used to go there to the Madhushiva Srinivas Maharaj, and always we would ask him, inquire from him, some questions were there. And he personally, Asura Srinivas Maharaj, personally told Gurudev this history of how he first met Srila Padma Gurudev. So Guru Maharaj said he was a very astonishing person in every way. So we are very lucky to have met him on this day. We are begging that he will give mercy to all of us.
Someone may tell that at the time of Chaitanya Mahaprabhu, Murari Gupta, the brother of Sanatana Goswami,
Anupam,
and others, Haridas
Thakur,
or so many, were of different, perhaps not Upapatya Bhava, but at the time of Chaitanya Mahaprabhu, all the associates of all the Leelas, they were with Chaitanya Mahaprabhu. And they were not sadhak, they were parikar of Sri Chaitanya Mahaprabhu, or Ram, or Nisingha, and so many. So there is no question of that. They were not sadhak. So they never changed their ras. But in Jaiva Dharma we see one guru, one Shiksha guru, but Brajanath and Vijay Kumar. Vijay Kumar went in Madhuras and Brajanath in Shakar. He became Grihastha and he became, those who are married, he became renounced order, Babaji ways. And those who are not married, he married. So many things. কি একটা মনে হচ্ছিল ভুলে গেল হমনে মাধুর্য কদম্বিনী আরম্ভ কিয়া থা ভাই সব সময় মধুর রস কে শুনে সে নহীঁ কাম হোগা কেবল মধুর রস কে শ্রবণ সে নহীঁ হোগা হম লোগোঁ কো জো অনর্থ হ্যাঁ উন অনর্থো কো পহলে সমঝো আর সমঝ করকে উনকো দূর করনে কি চেষ্টা করো নহীঁ তো মধুর রস কা কিসি ভি ভক্তি মেহীঁ প্রবেশ নহীঁ হোগা পহলে भक्ति के अनिश्चिता भक्ति को बतलाया और अनिष्ठा भक्ति में भी उत्साहमयी घंतरना बीड विकल्पा तरंग रंगिनी नियम क्षमा इत्यादि का वर्णन किया छाव का। उसके बाद में उसकी यदि वो भी दूर हो जाते हैं तभी कुछ अपराध रहते हैं। इसके लिए बतला रहे हैं अनर्थ चार प्रकार के हैं। उस दिन पहले दिन बतलाया था दुष्कृति उत्थ, सुकृति उत्थ, अपराध उत्थ और भक्ति उत्थ। अब इसको समझो गुरु पदाश्रय पहले, फिर गुरु से शिक्षा लेना, और गुरु से शिक्षा लेने पर, भजन शिक्षा इत्यादि समझ लेने पर, फिर अनर्थ के रहते हुए ही भजन क्रिया आरंभ होती है। जिन्होंने गुरुकरण या शिक्षा गुरु किया, those who accepted दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु, एंड गुरु टोल्ड हाउ टू डू भजन। बट इफ ए डिसाइपल नॉट ओबेग हिम, देन व्हाट गुरु कैन डू? गुरु कैन एडवाइस, गुरु कैन टेल ऑफ होल्ड माय फिंगर एंड वॉक विथ मी, ओनली ही कैन डू। बट यू विल हैव टू वॉक ऑन योर फीट। सिमिलरली गुरु विल टेल ऑल दीज आर अनर्थ्स एंड व्हाट इज भक्ति यू शुड फॉलो। बट डिसिपल्स अगेन एंड अगेन टेलिंग, आई कैन नॉट फॉलो यू, आई कैन नॉट फॉलो। देन व्हाट गुरु विल टेल? ओ यू शुड डू व्हाट यू वांट, व्हाट यू कैन टेल। He asks from Gurudev, Gurudev, give me poison. And Gurudev tells, what? How can I give you poison? I cannot give you. It is absurd to be. I cannot give you poison. You can go and for market, you should buy yourself. But by my hand, I cannot give you. That this is the some cases with now disciples, so many disciples, but not obeying. Then what guru they will tell? Some tell that if disciples are doing aparadh in the lotus feet of Vaishnav and guru, then guru will have to test.
Get the reaction.
Reaction will come to whom? Or don't think like this. It will not come to Guru. It will come to that very disciple. Because Guru is Siddha. He will destroy all reactions. No reaction will be to him. Cannot touch. So, अर्थ मैंने बतलाया, अनर्थ जो अर्थ न हो। अर्थ कृष्ण ही एकमात्र अर्थ है, उनकी भक्ति अर्थ है, संपत्ति है, और बाकी सब अनर्थ है। अर्थात जो परमार्थ नहीं है वो सब अनर्थ है। इसलिए कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और जो कुछ है सब अनर्थ है। मुक्ति की कामना भी अनर्थ है। ये अनर्थ में पहला अनर्थ बतलाया, दुष्कृति उत्थ अनर्थ। पहले जन्म में, बहुत से जन्मों में, हजारों जन्म में या पूर्व जन्म में, लाखों जन्मों में किए हुए कर्मों के फल से दुख आ जाना, नहीं चाहने पर भी दुख आएगा, बुढ़ापा का दुख सबको आएगा ही, मरने का दुख आएगा ही, और जिसका जितना जगत में अटैचमेंट है, आसक्ति है, उतना ही वो दुखी रहेगा। द्वेष और राग, अविद्या, अविद्या माने कृष्ण को भूलना, अविद्या, अस्मिता, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, और ये हमारे पुत्र परिवार धन संपत्ति मेरा है, ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। ऐसे दुष्कर्मों से होने वाले अनर्थ को दुष्कृति उत्थानार्थ कहते हैं। क्या
क्या इंग्लिश में बोल रहे थे?
वो थोड़ा एक व्यक्ति को समझाना था इसलिए विदेशी
I can say one thing.
What?
I want to say one thing about this Sarup. One time, there was in Navadvip, many years before, one brahmachari, Bengali, he was too much giving lecture and too much shouting. Oh, all are not associates, all are not Gopi Bhav. What about this? What about Advaita Charya? What about Srivast Thakur? What about Janam? Murari Gupta, all are not gopis, all are not gopis. Anyone who said this is not true, and after the lecture, Guru Maharaj went and slapped him on the face and said, we are not following
who?
One brahmachari.
Who gave slap?
You.
Oh.
Then Guru Maharaj slapped him very hard and said, you are foolish. We do not follow all the parikas of Mahaprabhu. We follow Rupa and Sanatan. So, and he said, this is not Guru Bhakti, only going, Jai Srila Bhava Maharaj, Jai. This is not Guru Bhakti. Guru Bhakti means to follow the idea of your Guru. Then this is Guru Bhakti. So we're hearing from Srimad Durjakata Mini. What, only by hearing we can directly enter Madhuri Ras, the service of the gopis? No. First we'll have to think, where am I? What is my position? And we will have to make endeavors to remove these anattas that we presently have. Otherwise, we cannot enter the service in the mood of the gopis. So even after passing the stage of Anistita Bhakti that we went through, the six stages, Gaura Tarana, Vitsanamayi, etc., etc. Even after crossing these six, still there will be some offense there. These are four types. Duskriti Utta, Sukriti Utta, Aparad Utta, and Bhakti Utta. Next verse. These four things will still be present. What are they? Duskriti Utta means we have had millions and millions of births. Oh, sorry, first. So one person, he takes the shelter of the feet of Guru. Then he takes Shiksha from the spiritual master. Then, despite the presence of anattas, he begins the performance of his bhajan. So, we should know, what are these anattas? Anatta. Atta means wealth. What is the real wealth? Krishna and Krishna Bhakti is the real wealth. That which is not related to Krishna or his devotion, this is called anatta or useless. Therefore, even the desire for liberation is described to be an unwanted desire. Duskriti Utta. That means we have had millions and millions of lives, and we have collected so much karma from that, the reactions to our own activities. The result of this is unlimited suffering from old age and death. That much we are attached, that much we will suffer. Then comes the five types of flesh, of disturbance that are destroyed by bhakti. They are raga, attachment, avidya, ignorance of Krishna, asmita, forgetfulness of my position and being absorbed in thoughts of I and mine, dvesh, enviousness, and abhinaveshita, absorption in material enjoyment. Hello.
हो गया अच्छा नंबर दो सुकृति उत्था अनर्थ पूर्व में जन्म में किए हुए सत्कर्म या सकाम पुण्य कर्म उनके फल से जगत में वैभव स्वर्ग लोकों में सुख भोग इत्यादि कामनाएं पुण्य कर्मों से उत्पन्न हो रहा है अनर्थ भुक्ति और मुक्ति की कामना को सुकृति अनर्थ कहा जाता है। पातंजल इत्यादि महर्षियों ने भी इन्हें अविद्या अस्मिता इत्यादि पांच प्रकार के क्लेशों को अंतर्भुक्त किया है। अपराध उत्थानर्थ दस प्रकार के नमापराध हैं, उनसे उत्पन्न होने से जो अनर्थ, मत समझो जो किसी वैष्णव की निंदा करने से कुछ नहीं होगा, मत समझो, हम तो देखते हैं कि उसी जन्म में उसका फल मिल जाता है। नित्यानंद प्रभु को रामचंद्र खां ने बेस्या भेजा और उनको घर में ठहरने नहीं दिया, और फल क्या हुआ, उसी जन्म में उसी समय मुसलमान लोग उनको कत्ल कर दिया, वहीं पर गोमेद माने गोमांस पकाया, वहीं पर खाया, उसके घर पार को सबको जला फला करके खा। गोपाल चापा को भी ऐसे ही हुआ, गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ व्याधि हो गई, हरिदास ठाकुर को अपमान। मैंने भी ये अपने जन्म में देखा, गुरु महाराज जी को जब बाग वहां से गौड़िया मठ से जब चले आए तो उनके प्रति बहुत जोर जोर लोगों ने अत्याचार किया, किसी को सांप काट दिया, किसी कोई अंधे हो गए, कोई कुछ हो गए। और अभी भी हम देखते हैं जो लोग वैष्णव अपराध करते हैं उनको साथ ही साथ दंड भोगना पड़ता है, इसलिए खबरदार कोई भी वैष्णव अपराध न हो जाए। अपराधों से उत्पन्न होने वाले अनर्थों को अपराध उत्थानर्थ कहते हैं। पाप और अपराध दो चीज है, अच्छी तरह से समझो, दोनों देखने में एक ही हैं। एक आदमी को मारना ये पाप है, चोरी करना पाप है, पर नारी गमन पाप है, कठोर भाषण पाप है, दुष्ट आचरण दुराचार करना, धन की तृष्णा इत्यादि, शराब पीना, मांस मछली अंडा खाना, ये पाप है। इनको भी दो श्रेणियों में बांटा गया, नौ श्रेणियों में, अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपातक, संकरीकरण, संकरीगण, अपात्रीकरण, जाति भ्रंशकर, मलावह और प्रकीर्ण, ये नौ श्रेणी के ये पातक हैं। किंतु देखो अपराध नहीं, अपराध कब होता है, जब यही चीजें वैष्णव के साथ में हो, वैष्णव को मारना, उनको आदर न करना, उनको गाली देना, मारना पीटना, निंदा करना इत्यादि, पाप शरीर से संबंध रखते हैं और अपराध आत्मा से संबंध रखते हैं। कभी कभी देखा जाता है हमारे बड़े बड़े पापों का फल कैंसर, टीबी और ये सब रोग भी देखते हैं, ऐसे भी देखे जाते हैं। कोई भी दुख होता है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, सुख होता है पूर्व जन्मों के सुकृति से। स्मृति शास्त्र में अनेक पापों के प्रायश्चित वर्णन किए गए हैं, इनका यदि जिनका यदि विधि पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। और किंतु पाप की वासना नष्ट नहीं होगी, पाप तो दूर हो जाएगा किंतु पाप की वासना नहीं दूर, वो तो भगवान नाम और भगवत भक्ति से ही एकमात्र दूर होगा। इसलिए अपराध पाप से भयानक, बहुत अधिक है, भयानक है। अपराध भक्ति में चार प्रकार के अपराधों का वर्णन मिलता है, सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध और भगवत अपराध। सेवा अपराध, भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा में अपराध, नाम के प्रति अपराध, दस नाम अपराध, वैष्णव अपराध और भगवत अपराध। भगवान के शिव विग्रह की सेवा में जो अपराध होता है उन्हें सेवा अपराध कहते हैं, भगवान के विग्रह में की सेवा में। और रसोई बनाने में भी कोई दोष हो तो भी वो सेवा अपराध है। भगवान के नाम के प्रति जो अपराध है उसे नमापराध कहते हैं। वैष्णव और भगवत भक्तों के प्रति जो अपराध हो उन्हें वैष्णव अपराध कहते हैं। जो भगवान के प्रति अपराध होते हैं वे भगवत अपराध है। भगवत विग्रह की सेवा में तो अनात्म शरीर से होता है, किंतु उसका लक्ष्य है जीवात्मा के साथ में परब्रह्म का मिलन, उनकी प्रेममयी सेवा। जीव अनात्म वस्तु नहीं है, शरीर अनात्म वस्तु है। भगवान भी अनात्म वस्तु नहीं है, आत्म वस्तु है, दोनों चीज वस्तु हैं। अतः सेवा विग्रह में यदि कोई अपराध होता है तो आत्म वस्तु से संबंध होता है, इसलिए इससे भी बचो, इससे भी बचो। इस प्रकार भगवान के नाम का जो श्रवण कीर्तन इत्यादि है उसमें श्रवण कीर्तन आदि का लक्ष्य अनात्म वस्तु नहीं है, क्या है, नाम नाम या भिन्न होने से सज्जानंद नाम के प्रति है, उसका भी आत्मा से संबंध है। अतः नाम के प्रति अपराध होना भी आत्म वस्तु के प्राप्त अपराध।
Those problems which arise from the result of our past sinful activities in millions and millions of lives, in the form of old age, death, cancer, etc. Now the second one, Sukriti Uta Anatta. Some people perform so much good activity or pious activity, sat karma, sat punya. As a result of these good activities, these pious activities, that person receives so much opulence and material happiness. This is an anatta or an obstacle for bhajan. Therefore, the desire for mukti, material enjoyment, or mukti, liberation, is also an anatta arising from past goods and goodies. Therefore, do not think, oh, Vaishnava pride is nothing.
This is sounds.
Do not think.
Kirtane karo.
Do not think, Vaishnava pride is nothing, I cannot see the result. No. Even we can see that people taste the results of Vaishnava pride even in this life. Like Ramachandra Khan, he committed offense to Sri Haridas Thakur by inviting the prostitute to cause his downfall. And then when Sri Dhinanabhu himself came to the house of Ramachandra Khan, he would not give him a place and said, you can stay in the Goshala. What happened to him? Immediately, the Muslim armies came, destroyed his household, put him in the jail, and on that very spot they ate the flesh of a cow. Therefore, even in this life, someone can directly taste the results of Vaishnava aparadha. Or Gopal Chakravarti Thakur, by disrespecting Sri Haridas Thakur, he immediately became afflicted by leprosy. Therefore, Guru Maharaj says, even our Param Gurudev, those, when he left the Chaitanya, the Mulmat, many people became against him. Gurudev said, we saw directly some of those persons die by snake bite. Some became blind, and others drank poison and committed suicide. Therefore, Guru Maharaj said, even we see in this life around us, those who commit Vaishnava Aparadha will be punished and suffer miserably. Therefore, be careful of Vaishnava Aparadha. Some people think, oh, sinful activity and aparad looks the same, but it's not the same. There is a vast difference. The Manusamhita has described different types of sins, like beating someone, stealing their property, raping ladies, drinking alcohol, eating chicken, meat eating. These simple activities have been described to be of 9 different levels. Atipatak, Mahapatak, Anupatak, Upapatak, and the other ones. 9. Now these are 9 sinful activities in gradations from less severe to most severe. But these are not offenses. But when these same activities are applied towards a Vaishnava, then they become aparad, to beat a Vaishnava, to disrespect a Vaishnava, etc. Then it becomes aparad. Pap, sinful activity, is concerned only with the body. But aparad is concerned with the Atma, the soul. Therefore, even this life, we see people reap the fruits of their sinful activities in the form of great diseases like tuberculosis and cancer. Therefore, the conclusion, therefore one can destroy sinful activity by different forms of prayaschitta or penance. But despite performing penitential activities, still, pāpa-vāsanā, the tendency to commit sinful activities, remains. So this pāpa-vāsanā, the tendency to commit sin, is destroyed only by bhakti and by association with sadhus. Therefore, the conclusion is, by performing sat-karma, good activities, one enjoys material happiness. By performing sinful activities, one receives material miseries. But aparād is thousands of times greater in severity and effect than sinful activities. Therefore, here Sri Krishna Chakravarti Thakur has described 4 types of aparād: seva aparād, nam aparād, vaiṣṇava aparād, and bhagavat aparād. The 33 seva aparāds that are committed towards the vigraha in his seva. For example, if we make some mistake in cooking, this is called seva aparād. If we commit the 10 types of nam aparād, this is called nam aparād. If we commit offense to Vaishnava, this is called Vaishnava aparād. If we make offense to the Vigra, if we make offense to Bhagavan, this is called Bhagavat aparād.
The last me samajh nahi.
The jiva has atma vastu.
I will explain later. कल हम लोग पहले जाएंगे ब्रह्मांड घाट, और जो लोग स्नान करना चाहें स्नान करेंगे, आचमन करके वहां की कथा होगी, और वहीं पर ये देगा ब्रेकफास्ट दाऊ जी. दाऊजी तो गए थे,
अभी तक कोई नहीं पहुंचा. फोन आया था 5 मिनट
पहले. हां
5 मिनट पहले टेलीफोन आया था, अभी तक कोई नहीं पहुंचा.
वहां नहीं गया है तो उसको कहो जाने के लिए.
वो नहीं भेजा.
हां
वो तो दोपहर का आ गया
लौट के.
हां 2 बजे आ गया.
उसको किसी ने बोला जाने के लिए? अभी तक तो नहीं पहुंचा.
तो किसी को कहो जो वहां जाए. ओके बोले दिए परेशानंद के. तो जाएगा तो उसे पूछ लेना फिर फोन करके, जो वहाँ पर आदमी गया कि नहीं, व्यवस्था हो रही है कि नहीं. और देन वी विल गो टू महाबन गोकुल नंद पैलेस एंड सो मेनी प्लेसेस देयर. और आफ्टर दैट विल गो टू Dauji, breakfast there, we will take the darshan of Dauji, and then we will return back, we will come to Ravel, birthplace of Srimati Radhika, and then we will return here.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Parishananda Prabhu, aap jahan kahin bhi ho.
Hare Krishna. Tomorrow again we will go by bus. All the devotees who have arrived today, yesterday, day before, if you are not registered, it will be difficult to obtain seat on the bus. There may be seat or not. We request you to register the banquet is the table. Tilak Rashtrapu will help you to obtain card and also place in bus. Again, those who are on standby, be patient. There will be places, but we will first serve those who have properly registered. I also request all the devotees who do not have yet a place at the lotus feet of Giridhar Govardhan. We will go there in 3 days. If you are not sure where you will stay, and you have paid your fee, registered, everything, please approach Brinda Devi. She is here. And consult with her where you can stay, where you want to stay, so that there will be no anxiety on your part once we arrive there after 3 days. Hare Krishna. Passports are valuable.
Sudama Prabhu.
Which you are.
Yes, Sudama. Indian. Na.
Which you want to deposit.
Sudama Prabhu. Inke saath mein jayenge Dao ji.
After class on the in the courtyard here behind Govinda Bhavan, Sripad Vaikunaswaras will take charge of your valuables, and when parikram is over, you will return them, receive them again.
Sudama Prabhu attend again also. Sudama Prabhu Maharaj attend this and Parama Prabhu Sunday Jawaharlal Nehru. Yes, Manoj Krishna.